Харе Кришна. Драшмад Бхагаватам. Скандх 8, Адхьяй 3, Шлок Санкхя 17. Хамаре пиши прогресс, бар я болнега. Мадрик Прапанна Пашупашви Мокшаная. Муктая Бхури Каруная Намолалая. Сваншена Сарватану Бхин Манаси Пратита. Катагга Дрише Бхагавате Брихате Намасте. Маджака, мере сама, прапанна, шарнагат, пашу, пашу, паша, бандхан се, вимокшаная, чудане вале ко, муктая, пракрити ке кармаш се, ачхуте парамешвар ко, бхури карунайа, асим даялу ко, намаха, намаскар карта ху, альяя, кабхи бхи, асадхан, я акарманне, на рехне вало ко, сваншена, апке парматма руб, анч се, сарва, сабо ка, тану брита, пракрити ме дех дхари жив, манаси, ман ме, пратита, критагья, пратаяк дрише, пратьякт дришта ке руб ме, Бхагавате, Бхагаван ко, Грихате, Асим, Намаха, Намаскар картам, Те, Тум ко. Анувадам татпара Шрила Прабхупада джи ке двара, Шрила Прабхупада ки. Чунки мужже, джайсе пашу не, парам мукт, апки шаран грахан ки хай, атев, ап нишче хи, мужже ис санкатмай ститти се убхар ленге. Нисандех, атьянт даялу хоне ке каран, ап нирантар мера уддхар карне ка прайас карте. Ап апне параматма руп анч се самаст дехдхари живон ке хирдай ме стит хен. Ап пратьякш дивья гьян ке руп ме викхят хен. Ор ап асим хен. Хе Бхагаван, мя апко садар намаскар карта хун. Прабхупададжи Патпатме батате хен. Шри Вишванатх Чакраварти Тхакур не Брихате Намасте шабдо ки вьякхя Брихате Шри Кришнае ке руп ме ки хе. Бхагаван то Кришна хе. Татва анек хе. Ятха Вишну Татва, Жив Татва, Шакти Татва. Кинту сабо се упар Вишну Татва хе. Джо Сарва Вьяпи хе. Бхагаван ке ис Сарва Вьяпи руп ки вьякхя Бхагавад Гита ке 10-ве адхьяй ке 42-ве шлок ме ки гай хе. Джисме Бхагаван кехте хе Атва Бахут Инетина ки гьятен Тава Арджуна. Вишта бхаяхм идам критсанам еканшанастто жагатаха. Кинту хе Арджун, ис вистрит гьян ки кя авашакта хе? Апне ек анч се, мэ ис сампурн брахманд ме вьяпта хун, ор иска палан карта хун. Ис пракар Кришна кехте ки сара бхаутик жагат, унке аншик сваруп параматма двара палит хе. Бхагаван пратьек брахманд ме पहले गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और फिर शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार करके सभी जीवों के हृदयों में यहां तक कि परमाणुओं में भी प्रवेश करते हैं. अंडांतनस्त परमाणु चयदंतस्त. प्रत्येक ब्रह्मांड परमाणु से ओतप्रोत है और भगवान ना केवल ब्रह्मांड के भीतर अपितु परमाणुओं के भीतर भी विद्यमान है. इस प्रकार वे प्रत्येक ब्रह्मांड में Вишну ке анш параматма руп ме стит хен. Кинту житне бхи Вишну татва хен ве Кришна се хи удбхут хен. Джайсе ки Бхагавад Гита 10-2 ме пришти ки гая ахам адирхи деванам. Кришна ис бхаути жагат ме девон Брахма, Вишну татва Махешвар ке ади атха удгам хен. Исли яха пар унхе Бхагавате Брихате каха гая хен. Хар вякти Бхагаван, हर व्यक्ति भगवान है अर्थात ऐश्वर्य युक्त है. किंतु कृष्ण भगवान भगवान असीम ऐश्वर्य के स्वामी हैं। ईश्वर है परम कृष्ण, कृष्ण हर एक के उद्गम है। अहम सर्वस्य प्रभवो, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर भी कृष्ण से उत्पन्न है। मतः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, कृष्ण से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं है। अतएव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवते गृहते का अर्थ है श्री कृष्ण को। इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक मनुष्य पशु है, क्योंकि वह देहात्म बुद्धि से युक्त है। यस्य आत्मा बुद्धि कुण पेत्र धातु के स्वधि कलत्रादिशु भौम इज्यधि यत् तीर्थ बुद्धि सलिलेन कर्चित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरा। जो मनुष्य तीन तत्वों से बने शरीर को आत्मा मानता है, मतलब खुद मानता है, शरीर मानता है, अपने आप को मानता है, जो शरीर के उपजातों को अपने संबंधी मानता है और अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थानों में दिव्य ज्ञानवान व्यक्तियों से भेंट करने की नहीं अपितु केवल स्नान के लिए जाता है, वह गाय या गधे के समान माना जाता है। भागवत 10:84-13 में इस तरह प्रत्येक व्यक्ति एक तरह से पशु है और हर एक पर भौतिक संसार रूपी घड़ियाल आक्रमण करता है। वह न केवल गजेंद्र का आक्रमण करता है अपितु हम में से हर एक पर आक्रमण करता है और हम उसके दुष्परिणाम भोगते हैं। केवल कृष्ण ही हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते हैं। निसंदेह वे सदैव हमारा उद्धार करने का प्रयास में लगे रहते हैं। ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वे हमारे हृदयों के भीतर है और तनिक भी असावधानी नहीं बरतते। उनका एकमात्र उद्देश्य जीवन से हमारा उद्धार करना है। ऐसा नहीं है कि जब हम उनकी प्रार्थना करते हैं तभी वे हमारी ओर ध्यान देते हैं। वे हमारे प्रार्थना करने से पहले से ही हमारा उद्धार करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। वे हमारे उद्धार के विषय में तनिक भी आलस नहीं करते। अतः इस श्लोक में कहा गया है भूरि करुणाय नमो ललाय, यह भगवान के अहेतु की कृपा ही है कि वे हमें सदा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ईश्वर मुक्त है अतएव वे हमें भी मुक्त बनाना चाहते हैं, और यद्यपि वे निरंतर इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं किंतु हम उनके उपदेशों का पालन करने से इनकार करते रहते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य ममामेकम शरणम व्रजा, इतने पर भी वे क्रुद्ध नहीं होते, इसलिए उन्हें यहां भूरी करुणाएं कहा गया है। वे हमें इस कष्टप्रद भौतिक जीवन से उबारने तथा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए अत्यंत दयालु रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासाद गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। प्रसंग चल रहा है गजेंद्र की समर्पण स्तुति। गजेंद्र जो कि हाथियों में राजा है, हम लोग कई बार सुन चुके हैं, और अपने परिवार के साथ जल केली के लिए तालाब में एंटर करता है और वहां पर काफी देर खेलने कूदने के बाद अचानक एक बड़ा घड़ियाल उस गजेंद्र का पैर पकड़ लेता है और अब वो छोड़ता नहीं है। गजेंद्र बहुत प्रयास करता है, इतना बलशाली है, लेकिन उसके कई प्रयासों से उसके परिवार की मदद से भी नहीं छूटता और फिर बाकी परिवार वाले बाहर भाग जाते हैं। अब वो अकेला है क्योंकि पानी में है, इसलिए उसकी शक्ति कम हो रही है, घड़ियाल पानी में रहता है। बाहर खींचने का प्रयास भी करता है लेकिन फिर वो उसको अंदर ले जाता है। खूब प्रयास चल रहा है। ये गजेंद्र अपने पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न राजा थे, जो अच्छे भक्त थे भगवान के, राज्यपाट से सब कुछ से उसने वैराग्य ले लिया है ना, और इस प्रकार उसने अपना भजन शुरू कर दिया करना। लेकिन एक बात बताते हैं, अगस्त मुनि आए उनके आश्रम में और उनको देखकर वो खड़े नहीं हुए क्योंकि ध्यान मग्न थे, तो उनको एक श्राप दे दिया कि भक्त का तुमने सम्मान नहीं किया, उनका आदर नहीं किया, कि तुम जो है अगले जन्म में क्या बन जाओ, हाथी बन जाओ। पिछले जन्मों में हम देखें, पिछले युगों में धर्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले लोग बहुत हुआ करते थे क्योंकि धर्म प्रोमिनेंट रहता था और थोड़ी सी भी गलती पर तुरंत क्या मिल जाता था, श्राप मिल जाता था। लेकिन ये श्राप जो भक्त लोग देते थे इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता था, क्योंकि कई बार लोग बोल सकते हैं अरे भक्त होने के बाद केवल उनको प्रणाम नहीं किया या उनका रिस्पेक्ट नहीं किया तो इतनी सी गलती पर व्यक्ति को हाथी बना डाला है ना, कोई कह सकता है कोई व्यक्ति, क्योंकि भक्तों के तो जो हम गुण पढ़ते हैं, अब अगस्त मुनि को हम लोग निंदा थोड़ी करेंगे उनकी। तो भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान की ही योजनाओं के द्वारा कार्य करते हैं और उसमें कोई ना कोई प्रयोजन होता है भगवान का, है कि नहीं। जैसे जब नलकुवर और मणिग्रीव, कुबेर जो कि बहुत अच्छे भक्त है भगवान के, राजा हैं, इंद्र जो हैं पूरे देवताओं के वो कैशियर हैं, लेकिन उनके दोनों बेटे बिगड़ गए, जिस पर धन अधिक होता है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, ज्यादा देखा जाता है, तो उन्होंने अय्याशी करना शुरू कर दिया। लेकिन जब नारद जी पहुंचे तो उन्होंने उनको जब देखा कि ये तो नग्न अवस्था में घूम रहे हैं तो उनको कहा तुम वृक्ष बन जाओ। अब देखने को नारद जी जा रहे हैं, उनको भी प्रणाम नहीं किया, अरे भाई उनका मैटर है, खेलें कूदें कुछ भी करें, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो। लेकिन क्या हुआ, नारद जी चाहते थे कि इनका भी उद्धार हो और भगवान की योजनाओं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब योजनाओं से भगवान का और भक्तों का ग्लोरिफिकेशन बढ़ता है या उनका एक लीला जो है वो होती है, और ये भक्तों को भगवान का गुणगान करने के लिए, भक्तों के गुणगान करने के लिए एक मौका मिलता है इससे। उनको कहा तुम नलकुवर मणिग्रीव तुम वृक्ष बन जाओ, लेकिन कहां बनो, कहां भेजा उनको, नंद महाराज के आंगन में, जैसे ये दो वृक्ष है ना यहां पर, तो इस तरह वो वृक्ष नंद महाराज के आंगन में बन गए। अब ये वृक्ष देखने में तो सिंपल वृक्ष है ना, बाहर में बहुत सारे वृक्ष है, ये भी एक वृक्ष है, लेकिन इस वृक्ष का क्या फायदा है, ये यहां मंदिर में मंदिर के भक्तों से ज्यादा, आपकी तो बात ही क्या करें, मंदिर के रहने वाले भक्तों से ज्यादा भगवान का रोज दर्शन करते हैं, है कि नहीं, तो कितने फॉर्चुनेट है। एक पुजारी भी जो है अपने टाइम से सेवा करके कुछ समय के बाद चला जाता है, लेकिन ये मंगला आरती भी अटेंड करता है वो तो सिग्नेचर करने का इनके पास नहीं है, इनके तो हमेशा अटेंडेंस लगी हुई है, रात तक भगवान को सुलाने के बाद फिर ये सोता है, कितना घंटा खड़ा होकर भगवान का दर्शन है ना। तो देखने में लग सकता है वृक्ष तो है, लेकिन वास्तव में ये भी एक जीवन है, प्लांट्स है लाइफ ना। तो देखने में लग सकता है कि उनको क्या दे दिया, वृक्ष का रूप दे दिया, लेकिन किसके द्वारा उद्धार हुआ उनका, भगवान कृष्ण के द्वारा। कितनी सुंदर लीला है, उस लीला के चलते हम लोग कार्तिक मास में भगवान को दीपदान करते हैं, है ना, और कितने लोगों ने उसका गुणगान किया है, नमामिश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलं गोकुले राजमानम यशोधा भियो लोख लाघवमानम परामिष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्य। भक्तों ने ग्लोरीफाई किया उस इंसिडेंट को, है ना। तो इस प्रकार ये लीलाएं घटित होती हैं और भक्तों को मौका मिलता है भगवान को और गुणों को देखने का, भगवान की दयालु, क्योंकि जो भगवान के अंदर क्वालिटीज हैं भगवान कैसे उसको एग्जिबिट करेंगे, जो डिवोटीज में क्वालिटीज हैं वो कैसे एग्जिबिट करेंगे, वो कब होता है मौका, जब इस प्रकार की लीलाएं संभावित होती हैं, घटनाएं घटती हैं। तो यहां पर इंद्रदुम्न महाराज को क्या मिल गया, श्राप मिल गया। देखने में लग रहा है भक्त छोटी सी बात पर श्राप दे दिया, लेकिन उसको उद्धार के लिए दिया, उसके फायदे के लिए दिया। और कहीं ना कहीं भगवान की इंस्पिरेशन है अंदर से, क्योंकि कुछ भी होता है, कुछ भी घटित होता है तो परमात्मा इन्वॉल्वमेंट होती है उनकी। कैसे, इसी प्रकार एक भक्त और तपस्या करते थे, श्रृंगी शमिक का सुना होगा, और परीक्षित महाराज जो कि पूरे पृथ्वी के राजा थे वो भी तो कमरे में एंटर किए, उनके भी स्वागत के लिए वो नहीं खड़े हुए। उन्होंने क्या कहा, अरे ये साधु जो है ध्यान में बैठा है, राजा आया है चक्रवर्ती सम्राट, उसको देख के खड़ा नहीं हुआ, पता नहीं आंखें बंद भी है कि नहीं, ध्यान में है भी कि नहीं, तो मरा हुआ सांप लिया अपने तीर से और उसके गले पे टांग दिया। अब शमिक ऋषि को जब पता चला तो उन्होंने श्राप दे दिया, है ना। और इस प्रकार उस श्राप से क्या हुआ, 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन वो 7 दिन का जो इंसिडेंट है, अगर हम लोग उस इंसिडेंट उस एनवायरमेंट को ही कोसते रहे कि क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, तो हमें श्रीमद् भागवतम नहीं मिलता। एक व्यक्ति को इस प्रकार का श्राप मिलने से 7 दिन के लिए सुखदेव महाराज कथा कर रहे हैं और वो भागवतम आज हमें प्राप्त है जिसपे हम लोग रोज कथा कर रहे हैं, है ना। एक व्यक्ति की वजह से हजारों लाखों करोड़ों लोगों का जो है फायदा हो रहा है। तो आप देखिए कि क्या फायदा होता है। फिर एक बार हम लोग बड़े मंदिर में थे तो एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि भाई हम भगवान को क्यों माने, भगवान ने तो युद्ध करवा दिया, देखो उनका भक्त चाह रहा है कि मैं युद्ध ना करूं, लेकिन भगवान ने फोर्सफुली उसको कहा भैया युद्ध कर, यही तेरा असली कर्म है, ऐसे भगवान को हम क्यों माने जो इतने सारे लोगों को मरवा दो। लगता है कई बार देखने में ऐसा क्यों हो गया। तो यहां पर पता चलता है कि वो युद्ध का कारण क्या था, धर्म की फिर से स्थापना करना, असुरों का वध करना और साधुओं की रक्षा करकर धर्म को फिर से स्थापना करना। कर्म अपने नीति नियत कर्मों को किस प्रकार करा जाए अर्जुन के माध्यम से सिखाना। जितने लोग मरे सब भगवान का दर्शन करके मरे। अर्जुन के तीर लगते थे, एक भक्त का तीर लग रहा है उससे वो पवित्र हो जाते थे और भगवान का दर्शन करते हुए शरीर का त्याग करते थे। शास्त्र कहते हैं सबको मुक्ति प्राप्त हो गई, क्यों, क्योंकि भगवान के दर्शन करके सब भक्त मतलब। और वैसे मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती, लोग पहाड़ों में गुफाओं में झरनों में कहां कहां बैठे हैं, सुबह से लेकर शाम तक सालों सालों साल तक क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि भगवान के चरण कमल का दर्शन हो जाए। और उधर लाखों करोड़ों को 64 करोड़ कहते हैं लोग इकट्ठे थे वहां पर, एक ही बार में मुक्ति प्राप्त हो गई, है ना। तो भगवान की योजनाएं जो हैं लोगों के उद्धार की रहती हैं। भगवान किसी पर प्रेमवश कृपा करें या फिर दंड दें किसी को, तो उसमें दोनों में उसका ही फायदा है। आप चाकू को पपीते पे ऐसे मारो या चाकू नीचे रख के पपीता ऊपर से मारो, क्या होना है, पपीता कटेगा। तो यहां पर कृपा की बात करते हैं कि या तो भगवान के भक्त भगवान से प्रेम पूर्वक संबंध बनाकर फेवरेबल कंडीशंस में भक्ति करें तो भी किसका फायदा है, भक्त का फायदा है, या फिर भगवान से द्वेष कर बहुत पूजा करवा ली तुमने अपनी, बहुत रासलीला करी है तुमने, खूब आनंद उठा रहे हो अकेले अकेले और हमसे कह रहे हो फूल बनाओ माला बनाओ पान बनाओ, हम भी करना चाहते हैं, हम भी आपकी तरह एंजॉय करना चाहते हैं। भगवान ने कहा नो प्रॉब्लम, तो जिन जीवों ने कृष्ण भूल लिया, कृष्ण को भूल गए, कृष्ण का अस्तित्व को भूल गए, कृष्ण की सुप्रीमेसी को भूल गए, और क्या इच्छा करी, भोग वांछा करी, निकटस्थ माया बिल्कुल नजदीक खड़ी है उनकी सेविका माया, निकटस्थ माया झापट या धारित तुरंत उनको झपट लेती कि आ जाए, अब आपको मैं क्या करूं, तुमने क्योंकि आध्यात्मिक जगत का नियम तोड़ा है, भगवान से अलग होकर इंजॉय करने की कोशिश करी है, इतनी बड़ी मशीन चल रही है, उस मशीन में नट बोल्ट लगे हैं, सब कुछ लगे हैं, लेकिन प्रोडक्शन होना उसका काम है, लेकिन एक नट बोल्ट को लगा मेरी वजह से प्रोडक्शन हो रही है, ऐसी प्रोडक्शन तो मैं अगर नट निकल जाऊं, बोल्ट निकल जाऊं यहां से, तो मैं अपनी प्रोडक्शन खुद कर सकता हूं, तो भगवान ने कहा ओके निकल जाओ, तो नट बोल्ट अलग हो गया और वो सोच रहा सेम प्रोडक्शन मैं भी कर सकता हूं, ये उसकी गलती है। तो इस तरह की जीवात्माओं को कहां भेजा गया, इस जेल में भेजा गया, इस संसार वाली जेल में, जाओ जो भोगना चाहते थे कर लो प्रयास, ये गीता ले लो, है ना। तो मैं इस प्रकार की सृष्टि रची भगवान ने, देखिए बच्चे अगर अलग हो भी जाएं तो माता का, माता पिता का दिल बच्चों की तरफ ही रहता है कि नहीं, चाहे कितना क्रूर क्यों ना हो। एक कथा थी ना, एक बार एक वृद्ध व्यक्ति घायल पड़ा हुआ था, चोटें लगी हुई थी, खून निकल रहा था, किसी व्यक्ति ने पूछा सर क्या प्रॉब्लम है, किसने मारा, कोई एक्सीडेंट हुआ, एफआईआर लिखवाई, कहते कुछ नहीं कुछ नहीं, कहते फिर भी कुछ बताओ ना, कहते कुछ नहीं घर की प्रॉब्लम है, मेरे दो बेटे, कहते अच्छा बेटे हैं आपके, कहते हाँ, बचपन से पढ़ाया लिखाया, बिजनेस कराया, जॉब कराई, मैं भी जॉब करता था, अब रिटायर हो चुका, पेंशन आती है, तो कहते फिर क्या प्रॉब्लम है, कहते कुछ नहीं, वो चाहते हैं पेंशन में भी हमारा हिस्सा, कहते तो, कहते कुछ नहीं, जब मैं इसको ज्यादा देता हूं तो वो मारता है, इसको उसको दे देता हूं तो वो मारता है, वो कहता मुझे ज्यादा दो, वो कहता मुझे ज्यादा दो, तो ये मेरी पिटाई हर महीने होती है इस तरह। कहता कमाल है, कहते काम करो, कितनी पेंशन है, कहता ये 20,000 रुपए पेंशन, कहता बहुत अच्छा है, आप हर वाली पिटाई खाते हो उनसे, रोज घर में बूढ़े बैल की तरह पड़े रहते हो, घर वाले तुम्हें तिरस्कार करते हैं तुम्हारा इतना, तुम्हें काम करो ना, भगवान की शरण लो ना, अरे एक छोटा सा मकान लो, किराए पे मकान लो, दो वक्त का भोजन करो, सुबह से लेकर शाम तक भजन करो, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, और भगवान का स्मरण करते धाम जाओ। कहते ठीक है, बड़ा अच्छा आइडिया है, और चल पड़ता है। कहते एक मिनट सुनो, कहते क्या क्या हुआ, कहता अगर मेरे बच्चे, उसको मार याद आ गई। यहां पर बताने का प्रयास यह है कि बच्चों के प्रति लोगों का कितना स्नेह रहता है, लेकिन करना हमें वही है जो उस आदमी ने बताया, चाहे बच्चे मारे चाहे प्यार करें, बड़े ही आज्ञाकारी भी क्यों ना हो, वो भी हमारे बंधन का कारण ना बन जाए, क्योंकि सब अच्छा लगता है ना, बच्चे मेरे बड़े ही क्या हैं, आज्ञाकारी हैं। 50 लोग समाज में बोलते हैं जी आपका बेटा हमने देखा है प्यार छूता, हमारा बेटा गाली देता है, तो शास्त्र कहते हैं, और ऐसा प्रसंग भी आता है कि जहां बेटा गाली दे, संतान गलत भी निकल जाए, तो माता पिता के लिए एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, किस चीज के लिए, निकल जाओ संसार के, भगवान कह रहे हैं कि दुख आ लिया शाश्वत, ये संसार दुख वाला है, अपने घर वाले दे रहे तो बहुत अच्छी बात है, कि पता चलना चाहिए कि हां अब समय हो गया, मैंने जो करना था कर लिया, अब मैं अपना भजन करूं, तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके बेटे भाग्यशाली है वो सास जिसकी बहू, और मंदिर आते ही हम इसलिए हैं, भगवान मेरी बहू को ठीक कर दे, किसी तरह मेरी बहू को ठीक कर, उसको उठा ले भगवान, बहू भी आती है कहती भगवान मेरी सास को उठा ले, भगवान कंफ्यूजन किसको उठाऊं, तो भगवान कहते हैं टाई हो गया, 5 प्रेयर तुम्हारी है, 5 इसकी हैं, दोनों इकट्ठे हो। तो बड़े भाग्यशाली है वो लोग जो चाहते हैं क्या, जो देखते हैं कि हां हमारे संतान खराब निकली या हमको परेशान कर रही है, नहीं नहीं पहले तो ठीक था, शादी के बाद ही प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो क्या आशा कर रहे, ठीक हो जाएगा सर, समस्या तो उनके साथ है जिनके बच्चे आज्ञाकारी हैं। पापा के लिए रोज मिठाई लेकर आते हैं घर पर। पापा और क्या चाहिए बताओ? बेटा सब कुछ दिया भगवान ने। अच्छा, किसकी शक्ल देखनी है बताओ? पोते की? पोते की भी दिखा दी। अब क्या देखना है पापा? सब देखिए बेटा, बड़ा अच्छा है तू, मेरा सबसे अच्छा बेटा है, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया पूरे इलाके में। अब मेरा घर जाने का मन ही नहीं करता, बाहर छोड़ने का मन नहीं करता। मंदिर बेटा यही मंदिर है, तू ही मेरा मंदिर है, तू ही मेरा भगवान है। तो ये प्रेम है, वो प्रेम उसको प्रेरित नहीं कर रहा भगवान की तरफ। उसको लग रहा है बस यही मेरा कुंभ, यही मेरा कुटुंब, यही मेरा सब कुछ। कितना आनंद है, कितना सुख है, यही चाहना हमारी। हर सास यही चाहती मेरी बहू क्या बने? आज्ञाकारी बने। हर पिता चाहता है मेरा बेटा मेरी आज्ञाकारी बने। और यह आज्ञाकारी कई बार गड़बड़ हो जाती है। हम लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अपने पिता को, असुरराज घर छोड़ो, वनन करो, वन की तरफ जाओ, ये संसार जो है बड़ा कष्टदायी है, अंधकूपम, घर गृहस्थी जो है इससे बाहर निकल नहीं पाता आदमी। तुम्हारा तो मैं एक ही लड़का हूं, है ना, वो भी बिगड़ा हुआ निकला उनके हिसाब से। वो तो मारने लगे प्रहलाद महाराज को, लेकिन वो इनकी मुक्ति का कारण बन गए, है ना। तो परिवार में व्यक्ति इतना आसक्त हो जाता है। तो उसने कहा कि यस ठीक है मेरे बच्चे, है ना, आखिरी में बूढ़ा व्यक्ति। तो वही हमारी स्थिति है, हम इतने ज्यादा आसक्त हैं अपने परिवार से, अपनी देह से, अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल से और उन योजनाओं से जो अभी दिमाग में चल रही है। ये होगा, इतना हो जाएगा, यहां इन्वेस्ट करूंगा, फिर ये मकान मेरा, फिर वो चार प्रॉपर्टीज मेरी, फिर बच्चों की शादी, फिर उसके बच्चे, फिर उनकी शक्लें देखूं और बस इस तरह से एक दिन खत्म हो जाऊं। हर व्यक्ति का यही लक्ष्य जीवन का, वो माला भक्ति मंदिर आने का भी उसका उद्देश्य यह है कि जो मेरे प्लान्स हैं वो सब ठीक चलते रहे, जो मेरी इच्छाएं वो ठीक चलती रहे। थोड़ा सा भी उस इच्छाओं में, थोड़ा भी उन सब चीजों में ऊपर नीचे होता है, फिर भगवान, हे भगवान, गजेंद्र की तरह बोलते, हे भगवान। वही दर्द है, वही प्रार्थना का स्वरूप है, लेकिन किस लिए है? थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, है ना, सब कुछ, बंगला गाड़ी ठीक करा दो भगवान, थोड़ा सा और ऊपर करा दो बस। हम मटेरियल पोजीशंस को बनाए रखने के लिए, भौतिक आसक्तियों को बनाए रखने के लिए, अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए, उसमें थोड़ा सा कोई बीच में आकर छीनने लग जाए तो उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान इसको हटा लो बस, ये हट जाए मेरी जिंदगी से तो मेरा जीवन सुखी हो जाए, ये चला जाए तो फिर सुखी हो जाए, ये मर जाए तो जल्दी ठीक हो जाए, ये और ये। आप समझिए, हमें जो दुख और हमें जो कष्ट मिल रहे हैं वो उन्हीं ग्रहों की, उन्हीं मगरमच्छों की तरह है, जिस प्रकार गजेंद्र का एक मगरमच्छ ने पैर पकड़ा हुआ है। हम ज्यादा फॉर्चुनेट हैं, हमारे को कई मगरमच्छों ने पकड़ रखा है। है कि नहीं भाई? गजेंद्र को एक ने पकड़ा, उसने प्रार्थनाएं करी भगवान से और भगवान ने तुरंत उसको मुक्त कर दिया। हमारी स्थिति थोड़ी अजीब है, हमें भी कई मगर एक ने नहीं पकड़ा, कई ने पकड़ा है, रिश्तेदारों ने पकड़ा हुआ है। ये प्रॉपर्टी हमारी, आधा हिस्सा हमारा है, भाई बहन कह रहे हैं कोर्ट में केस डाल देंगे, परेशान है, दुखी है, प्रॉपर्टीज को लेकर, शरीर को लेकर नाना प्रकार के दुख तकलीफ लगे पड़े, यहां दर्द आज वहां दर्द, दर्द है दिल, दर्द है जिगर, दर्द है कमर, हर जगह दर्द ही दर्द है। लेकिन फिर भी आशा है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, आएगा ऐसा दिन जब कोई दर्द नहीं होगा, जब मेरा प्राणायाम ठीक होगा, कोई दवाई नहीं लूंगा, कोई दारू नहीं लूंगा, ऐसा भी दिन आएगा। नहीं, दारू लूंगा लेकिन दवाई नहीं लूंगा, है ना, गाड़ी भी बिना किसी टेंशन के चलेगी, टैंक फुल होगा, बच्चे कहना मानने वाले, ऐसा दिन आएगा। लेकिन इसकी आशा में, तद अपि न मुच्यति आशा पिंडम, यह आशाओं का जो पिंड है वो खत्म ही नहीं होता। अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग गल जाते हैं शरीर के, बाल उड़ जाते हैं, दशनावहितम जातम तुंडम, सारे दांत बत्तीसी की बत्तीसी झड़ जाती है। वृद्धो यदि गृहत्वा दंडम, वृद्ध अवस्था आने पर हाथ में डंडा आ जाता है। शंकराचार्य कह रहे हैं तब तद अपनी न मुच्यति आशा पिंड, उसके बाद भी आशाओं का जो पिंड है, क्या आशा है?
छोटी सी आशा
है ना, ये आशा है हमारी। ये श्लोक एक फिल्म का है। तद अपनी न मुच्यति आशा, ये आशा खत्म नहीं होती, और इस वजह से हमारा चक्र चलता रहता है, उन आशाओं के साथ प्राण त्यागते हैं। गजेंद्र कह रहा मैं पशु हूं, मुझ पे आपने कृपा कर दी। क्या कृपा कर दी? परमात्मा रूप में आप हर जगह व्याप्त हो, मेरे शरीर में भी परमाणु परमाणु प्रभुपाद जी बता रहे हैं व्याप्त हैं भगवान, और हमारे ऊपर कृपा करने के लिए अगर हमें आपने यहां से भेज भी दिया इधर, तो क्या सिस्टम्स बनाए देखिए इस संसार में, क्या किया कृष्ण ने इस संसार को इस तरह से बनाया, 84 लाख योनियां बनाई, कुछ इस प्रकार के एंटिटीज बनाई जिनको पहाड़ पत्थर के रूप में, उसके अंदर भी प्राण है, मूवमेंट नहीं है, सेंसेस डेवलप नहीं है, उससे ऊपर कुछ ऐसे जीव बनाए रेंगने वाले जिनके हाथ पर प्रॉपरली डेवलप नहीं है, कुछ सेंसेस डेवलप नहीं है, वो वृक्ष बनाए जो बेचारे चल नहीं सकते, सेंसेस डेवलप नहीं है ज्यादा, और बनाए 4 पैर वाले पशु बनाए, ज्यादातर सेंसेस डेवलप है लेकिन बुद्धि डेवलप नहीं है, 2 पैर वाला जानवर बनाया, आप सोचेंगे कंगारू की बात कर रहे हैं, नहीं, किसकी बात होगी? हमारी। 2 पैर वाले जानवर भी बनाए लेकिन बुद्धि अच्छी थी ताकि इसका इस्तेमाल करें, और उसमें भी इन सबको 84 लाख में केवल ये 2 पैर वाले जो हैं यही पढ़ सकते हैं वेद, तो वेदास दिए, वेद पुराण इत्यादि दिए। भगवान ने कहा, शास्त्र कह रहे हैं कि ये कृपा करी भगवान ने, वेद और पुराण दे दिए। तो जो चार जिसने एक वेद पढ़ा है वो वेद कहलाता है, द्विवेदी भी होते हैं, त्रिवेदी भी होते हैं, चतुर्वेदी भी होते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं किसी ने जितना जितना पढ़ा उसका स्तर उतना उतना अच्छा हो गया। जिसने 4 वेद पढ़ लिए चतुर्वेदी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने इन वेदों को पढ़कर उसका अम्ल शुरू कर दिया, ये उससे भी महान। कोई कर्म कांड करता है वेदों के आधार पर, कोई ज्ञान मार्ग है ज्ञान कांड कर रहा है, और कोई उपासना कांड से है। तो इस प्रकार तमोगुण रजोगुण सत्वगुण के आधार पर इन वेदों की अलग अलग विभाग बनाए गए। ये 2 पैर वाले व्यक्ति जो है अलग अलग वृत्ति के हैं, किसी में तमोगुण प्रोमिनेंट है, किसी के अंदर रजोगुण है, किसी के अंदर सत्वगुण है, तो वो अपने गुणों के आधार पर इन वेदों से और पुराणों की शिक्षाओं से आकर्षित हो जाते हैं। जिनका लक्ष्य केवल इंद्र तृप्ति है वो पशुओं से अच्छी इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, और इसलिए वो क्या करते हैं, वो कर्मकांड की तरफ जाते हैं। वो देखते हैं संसार में जितनी मर्जी इंद्र तृप्ति कर लो मजा नहीं आता, कुछ भी खा लो कितना ही खा लो, थोड़ा सा ज्यादा खाते हैं पेट भर जाता है। कहीं घूमने जाते हैं तो घूमते घूमते थक जाते हैं, साइड चेंज करते रहते हैं, सोने का मन करता है तो कितनी देर सोए, पूरा शरीर दर्द करने लगता है कुछ समय के बाद। भोग करने का प्रयास करते हैं तो क्षणिक सुख चपल सुख से बोलते हैं, उसके लिए योजनाएं इतनी लंबी लंबी, प्लानिंग इतनी लंबी लंबी, प्रयास इतने बहुत ज्यादा और क्षणिक सुख, और फिर एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं तो जितनी देर तक देखते हैं 8 घंटे 10 घंटे 6 घंटे मैचेस देखते हैं तो आंखें जो हैं वो अपना एक्सपायरी डेट की तरफ निकलने शुरू हो जाती हैं, हर चीज यू टर्न लेना शुरू कर देती है। इस संसार में जिन चीजों में सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं वो सारी चीजें धीरे धीरे क्या करती हैं, यू टर्न ले लेती हैं, सुख नहीं है। फिर लोग कहते नहीं, पंडित जी बोलते हैं ये कर लीजिए ये कर लीजिए तो ये मिलेगा, ये कर लीजिए ये कर लीजिए ये भी मिल जाएगा। वो मिल गया पंडित जी, संतान नहीं हो रही, ये करो हो जाएगी, ठीक है जी कर लिया, कहीं अगर नहीं होती, कहीं हो जाती, चलो जो हो गई और हो गई तो वो उसको दुख देने का कारण बन जाती है। उसको बेटा तो जो बोलेगा मैं दूंगा, वो बिगड़ जाता है, वो उसके दुख का कारण बनता है। फिर उसको लगता है ये भी बेकार निकला, कुछ और। तो इस प्रकार फिर उसको लगता है यहां पर सुख नहीं है। फिर वो पढ़ता है कि स्वर्ग में जाऊंगा तो ज्यादा सुख मिलेगा, तो वो स्वर्ग जाने का प्रयास करता है। तो फिर वो अपने पुण्य कर्म बढ़ाता है, यज्ञ इत्यादि करता है, दान इत्यादि करता है, ताकि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, स्वर्ग में जाऊं। लंबे समय तक वहां रहते हैं और वहां एंजॉय करते हैं, यहां की इंद्र तृप्ति से ज्यादा अच्छी वहां की है, लेकिन वहां की इंद्र तृप्ति भी एक समय के बाद बोर कर देती है, क्योंकि कुछ समय के बाद हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं और वहां से फिर वापस शून्य पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, वापस नीचे भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने सृष्टि बनाई है, इस तरह से बनाई है, इस भौतिक जगत को इस तरह से बनाया है कि हर समय हर व्यक्ति दुखी रहे, परेशान रहे। यह कष्ट नहीं है, यह तो वरदान है। अगर जेल के अंदर शाही पनीर और दाल मखनी मिलने लग जाए तो व्यक्ति बाहर ही ना आए, आएगा कोई? बोलो सर, हेलो बोल, सर सूप भेज दो जरा। अच्छा, सूप, जेलर साहब सूप लेकर आ रहे हैं, है ना, असिस्टेंट रखे हुए, वो चक्की मेरी पीसनी थी, तू चक्की पीस मिल जाएगा, वो चक्की पीस रहा असिस्टेंट उसका। सर आज पिज्जा खाना है, सर बाहर से मंगाऊ या अंदर ही बना दू, समझ रहे? तो व्यक्ति क्यों निकलेगा जेल से बाहर? जेल को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि 15 लोग एक छोटे से कमरे में सोए और सारे खर्रांटे मार रहे हो खतरनाक। सपना भी आता तो लगता है कि जैसे बाइक की रैली में हूं जहां बाइक चल रही है, डर कर उठ जाता है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा, तो देख तो पास में सब लोग खड़े खड़े कर रहे हैं सब, जिसकी नींद खुल गई वो दोबारा नहीं सो सकता। और प्राणायाम इसलिए करते हैं ताकि लंबी सांस लेकर टॉयलेट में जाए, दोबारा लेनी पड़ गई तो मृत्यु हो जाएगी। गंदे टॉयलेट, लेटर लिखा हुआ, साहब इस टॉयलेट का कलर क्या था, कौन से रंग की लगाई थी, इतनी गंदगी। फिर मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ कमा लेते हैं, वो पुलिस वाले को पैसे देते हैं, साहब ये लो 500 रुपए, क्या कर रहे हैं? सर वो एक बीड़ी का बंडल आ सकता है अंदर? हाँ 500 आ जाएगा। वो वहां भी कमाइयां हो रही, बीड़ी का बंडल मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो व्यक्ति बाहर नहीं निकलता। लेकिन इतनी गंदगी, इतना दुख, चपातियां ऐसी जो दो लोग खींचते हैं तो टूटती है, या हाथ में आए तो लगता है सर पापड़ दिया या चपाती दिए, क्या है ये? आवाज बराबर आती है पापड़ उसमें, चाय ऐसी होती है इसका कलर चाय होता है, बरसात का पानी इकट्ठा कर लेते हैं, उसी को उबाल कर पिलाते हैं, चीनी डाल कर। ऐसा नहीं, कहने का मतलब है कि कष्ट इसलिए वहां पर ताकि व्यक्ति बाहर निकलने का प्रयास करे। हम तो गए लेक्चर में, हमने पूछा कितने लोग जेल से बाहर निकलना चाहते हैं, सबने हाथ खड़ा किया, ऐसे 3-4 लोग आगे बैठे थे, उन्होंने नहीं किया। मैं, भाई तुम क्यों नहीं हाथ खड़ा कर रहे? कहते हैं बाहर जाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इधर सब कुछ आराम से मिलता है, आप कंबल दे देते हो, आप खाने पीने की चीजें दे रहे हो, सब कुछ ठीक है। तो कई बार ये जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो बोलते हैं जेल की सुविधाएं बढ़ाओ, तो उसको उल्टा नुकसान क्या हो रहा है, वो फिर चाकू मार के अंदर आ जाता है, कहते हैं जाओ तुम्हारा टाइम पूरा भी नहीं, साहब साहब रख लो, अंदर रख लो, है नहीं तुम जाओ, चला गया, कहता अभी आता हूं, फिर वापस किसी का सर फोड़ाता है, किसी का पैसा उठा लाता है, फिर पकड़ के फिर अंदर, साहब आ गया। तो अपने साथ इधर यही हो रहा है, भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास आए, जैसे प्रभुपाद जी प्रकट में बता रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो अर्जी नहीं है वापस जाने की। यहां अच्छा लग रहा है क्योंकि कुछ दुखों के बाद फिर एक छोटा सा सुख मिलता है, जैसे कुत्ता अपनी पूंछ पकड़ता है, बड़ी देर तक हाथ में नहीं आती, कई बार आ जाती है हाथ में, तो थोड़ी सी खुजली करता है उसमें, तब तक फिर मुंह से निकल जाती है, फिर भागता है, इतना भागता है, इतना भाग, फिर पकड़ में लगता। तो अपनी स्थिति है, इतने सारे दुख, इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी तकलीफें, और बीच में अचानक इंडिया मैच जीत गई, तो इस बात की खुशी हो जाती है, डॉक्टर साहब ने बोल दिया आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, फिर खुशी हो जाती है। अपने को तो बार बार पकड़ रहा ग्राह, लेकिन समस्या क्या हो रही है, प्रार्थना करते हैं, छुड़वा भी लेते हैं, फिर अपनी टांग उसके मुंह में देते हैं, मतलब फिर संसार में आसक्त हो जाते हैं। तो गजेंद्र से सीखना चाहिए क्या कि उस जीवन में जब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार उसको पकड़ लिया और उसने फिर स्तुति करी भगवान की, उस प्रकार हमें भी स्तुति करनी आनी चाहिए। हम जब मंदिर में आते हैं तो हमें चाहिए कि हम भगवान की स्तुति करें, और स्तुति के लिए कुंती महारानी की प्रेयर्स सीखनी चाहिए, गजेंद्र की प्रेयर्स हैं, प्रहलाद महाराज की हैं, ध्रुव महाराज की प्रेयर्स हैं, है ना, इतने सारे भक्तों ने भागवतम प्रेयर्स करी है भगवान को, उन प्रेयर्स को याद कर सकते हैं, उनके मीनिंग को याद कर सकते हैं, संस्कृत याद नहीं होती। तो जब भगवान के पास आए तो उनका ग्लोरीफाई, उनको ग्लोरीफाई करें। हम आते हैं लिस्ट लेकर लंबी सी, ओम कृष्णाय नमः ने लिखा होता उसमें, है ना, उसमें क्या लिखा होता है, ये काम है भगवान, ये कर दो, थोड़ा सा ये भी कर देना और ये भी कर देना। हम अपनी इच्छाओं के लिए आते हैं, हमें चाहिए कि हम भगवान को पहले ग्लोरीफाई करें। आपको याद है भगवान के क्या क्या गुण है, जल्दी से बताइए, एक ही व्यक्ति जल्दी जल्दी गुण बताए भगवान का, और आप लिख भी सकते हैं उनको, जल्दी बताइए। तीनों गुणों से ऊपर है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण से ऊपर है, विशुद्ध सत्व में, और बताइए, सर्व आकर्षक है, उनको देखकर हर व्यक्ति हर जीव उनसे आकर्षित हो जाता है, पूर्ण ज्ञानमय है, मतलब उनको हर चीज का ज्ञान है, क्योंकि परमात्मा रूप में सबके हृदय में है और सारी सृष्टि उन्होंने बनाई है। यस, शक्तिमान है, उनसे ज्यादा शक्ति किसी के पास नहीं है, सारी शक्ति उन्हीं की है। धनवान है, सारी सृष्टि उनके, सारा सोना उनका है, सब कुछ उनका है। वैराग्य है, वो आध्यात्मिक जगत में रहते हुए भी अपने भक्तों की सेवा करने नीचे आ जाते हैं। क्या है भगवान का नाम, मीठा है, स्वादिष्ट है, ठीक है, दयालु है, आनंद के स्रोत हैं, पीसफुल हैं, सर्वव्यापी हैं, सभी कारणों के कारण हैं, हो गया। हाँ, और बस परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में वास करते हैं। हमें इस सृष्टि को प्रदान किया है जिसमें हमको हर चीज दी है भगवान ने, सृष्टि करता है, पालन करता है, विशंबर है, समदर्शी है, अपने भक्तों के प्रति ज्यादा वत्सल है, भक्त वत्सल है, पतित पावन है, पतित हम जैसे पतितों को उद्धार करने वाले हैं, भावग्राही है, हमारे जो इंटेंशन है उनको ग्रहण करते हैं। तो जब मंदिर आए ना तो ये सब शब्द बोलकर भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए, ठीक है क्या? गजेंद्र क्या कर रहे हैं, पिछले 10 श्लोकों से भगवान के इन्हीं गुणों को तो बोल रहे हैं कि आप सर्वव्यापी हैं, आप हर एक के हृदय में हैं, आप निर्गुण हैं, आप तीनों गुणों से ऊपर हैं, है ना, यही तो बात कर रहे हैं भगवान की। इतना ग्लोरीफाई किया और भगवान तुरंत पहुंचकर उसको रक्षा कर दे। तो हम लोग जब मंदिर आए जब भगवान के सामने खड़े हों तो भगवान के गुणों को उच्च स्वर में बोलना चाहिए या मन में बोलना चाहिए, भगवान आप ऐसे हैं, है कि नहीं? और अगर किसी को कुछ नहीं आता तो उसके लिए है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, है ना। तो भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए, जो कुछ बोले तो उससे संबंधित भगवान की लीला भी याद होगी। फिर दयालु है क्योंकि अपने भक्तों पर किस प्रकार दया करते हैं, विशंबर है पूरे विश्व का भरण करते हैं, चींटी को भी पाल रहे हैं, हाथी को भी पाल रहे हैं, सर्वात्मा है मतलब हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो जो शब्द बोले उस शब्द से भगवान को रिलेट करें, इसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। गजेंद्र महाराज यही तो कर रहे हैं। तो कहीं सूखा सूखा ना हो जाए सब कुछ, है ना। तो ये जो सृष्टि बनाई है भगवान ने इस तरह से बनाई है, और परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, मैं फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुओं को रक्षा करने के लिए धर्म की स्थापना करता हूं, है ना, और इस प्रकार के प्रसंगों के द्वारा अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। कौन तरह प्रति जाना ही ना मैं भक्त परिणति, कुंती मैं पुत्र मैं तो बोल सकता हूं लेकिन मैं चाहता हूं तुम बोलो। क्या बोलो? कि भगवान के भक्त का उनकी भक्ति का कभी नाश नहीं होता। और कितना बड़ा एश्योरेंस है हमारी लाइफ एश्योरेंस, तो हमें कुछ दे नहीं पाती, बाद में दूसरे लोग एंजॉय करते हैं उसको, लेकिन भगवान का एश्योरेंस कैसा देखिए। हम लोगों ने जितने भी भक्ति कर लिए, जिस भी पायदान पर पहुंच गए, है ना, इंद्रद्युम्न महाराज को शाप मिला, उनका स्तर भक्ति का क्या था, शायद लगभग पूरा ही था, लेकिन एंड में शाप मिला। तो जब ग्रह बनकर आए, हो सकता है उनके कुछ पुण्य और बचे हों जिसको उनको भोग करना हो, तो हाथी के रूप में उन पुण्यों का भोग किया, और अंत में जैसे ग्रह ने पकड़ा तो भगवान ने तुरंत मुक्त कर दिया। जड़ भरत महाराज भी अपना सारा राजपाट छोड़कर आए थे और जंगल में भगवान का ध्यान लगाते थे, लेकिन भक्ति का वो स्तर नहीं था, थोड़ा सा नीचे था, भाव तक पहुंचे हुए थे, लेकिन कहां जाकर आसक्त हो गए, एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए। इंद्रदुन किसी से आसक्त नहीं थे, छोड़कर आए यहां पर। और ये जड़ भरत सॉरी महाराज जो है भरत महाराज, हिरण से आसक्त हो गए। भक्ति का स्तर बहुत ऊंचा था, लेकिन भगवान ने क्या किया, अगला जन्म तो हिरण में दिया, क्योंकि हिरण से आसक्त थे। अंत काले च मामेव यम यम वापिस स्मरण भावत पजति अंत्य काले वर। कृष्ण कह रहे हैं कि जैसा जैसा मरते समय मेरा स्मरण करोगे मैं वैसा वैसा देह दूंगा। तो उन्होंने किसका स्मरण किया, हिरण का। तो भगवान को कहा, अरे भाई मैंने तो लिखा हुआ है ना, इंडियन पेनल कोड नहीं, कृष्णा का जो पेनल कोड है उसके अकॉर्डिंग भगवान कह रहे हैं कि जो जो करोगे मैं दूंगा। तो उन्होंने हिरण का ध्यान किया, हिरण का शरीर दिया। कोई कह सकता भगवान इतने निर्दयी हुए, पूरा जीवन तो भक्ति कर ली थी, फिर उसको हिरण का क्यों दिया। नहीं, भगवान के भी प्रिंसिपल्स अपने हैं ना। भगवान ने देखा कि ये भक्ति के इतने ऊंचे स्तर पर था, फिर ऐसा प्रसंग भी चाहिए कल को लोग ये ना बोले कि भक्ति से गिरने का मतलब खत्म हो गया व्यक्ति, फिर तो बताओ हिरण बन गया बताओ। नहीं, हिरण बनने के बाद भी उसकी अपनी याददाश्त बनी हुई थी, और वो पैदा होते ही अपनी मम्मी पापा को छोड़कर वो भी कुटिया में आ गए साधुओं की, और वहां पर कथा श्रवण करता था। याददाश्त बनी हुई थी, पता था कि मैं क्या गड़बड़ करके आया हूं, अब चैंटिंग नहीं कर सकता, माला नहीं पकड़ सकता, अब ऐसे से चलना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। वो देह त्याग करा, फिर एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, और अब सब जानते थे, अब उनको लगा पंगे नहीं लेने, है ना, अब क्या करना है, आराम से भक्ति करनी है। और एक मूक बधिर की तरह अपने घर में रहते थे, भाई बहन थोड़े ज्यादा बुद्धिमान थे, बाकी लोग वो उसका मजाक उड़ाते थे, इसको लगता था किसी काम का नहीं है, वो बिल्कुल काम का ही वो था, है ना, उनको लगता कुछ भी डाल दो, कुछ भी खिला दो, भूख लगी है नहीं लगी है, उनको देह का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन हर समय अंदर से भगवान का चिंतन चलता रहता, किसी प्रकार का फालतू का कर्म नहीं कर रहे थे, है ना। तो ऐसे स्तर पर क्या हुआ कि भगवान ने उनकी रक्षा भी करी, जब उनको डाकू ने पकड़ लिया, बलि देने लगे, है ना, उस तरह के भक्त को फिर वहां से मुक्ति प्राप्त। इधर गजेंद्र को अगले जन्म में प्राप्त होगी, मतलब हिरण से जिस तरह से नहीं हुआ, एक जन्म और दिया, और इधर गजेंद्र को उसी जन्म में ले लिया। तो भक्ति कभी का कभी नाश नहीं होता। हमारे जो 100 साल हैं, उन 100 सालों में हमने पता नहीं क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, लेकिन ये जो समय है कथा श्रवण का, ये जो समय है भगवान के नाम का जप का, वो जो समय है भगवान के लिए कुकिंग करने का, वो जो समय है भगवान के लिए वस्त्र ढूंढने का, वो जो समय है मार्केट में सब्जी लाकर भगवान के लिए ऑफर करने का, वो जो भगवान से कनेक्टेड चीजें हैं, वो सारी भक्ति कहलाती हैं। वो सब भगवान के लिए कर रहे हैं, ये कृष्ण भावना भावित इस प्रकार बनता व्यक्ति। तो जब भक्त लोग पहले एक मिनट वाले होते, जी एक क्षण बस मन लग जाए भगवान पर, हम तो कोशिश करते हैं एक मिनट लगा लें, वो भी नहीं लगता हमसे, लोग बोलते हैं ऐसे। अब एक मिनट कैसे लगेगा, 24 घंटे आप कहीं और मन लगा रहे हो और एक मिनट भगवान पे लगाना चाह रहे हो, नहीं लगेगा ना। फिर एक मिनट से 5 मिनट वाला होते हैं, मंदिर आ जाएगा, फिर एक माला शुरू करते हैं, 2 शुरू करते हैं, 16 शुरू करते हैं, तो ये समय बढ़ जाता है, हृदय शुद्ध होने लगता है, कर्म बदलने लगते हैं। पहले कर्म अपने लिए हुआ करते थे, अब भगवान के लिए होने लगे, और फिर धीरे धीरे भक्तों का स्तर ऊंचा होने लगता है, भक्ति का स्तर ऊंचा होने लगता है, कॉन्शियसनेस पूरी तरह से कृष्णमय हो जाती है, और फिर धीरे धीरे अब वो एक मिनट दो मिनट वाला सीन नहीं रहता, क्योंकि ही इज ऑलवेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, इन मोड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। और धीरे धीरे जो गोपी भाव है, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं, वो स्तर भी आ जाता है, है ना। तो इस प्रकार गोपियां का जो स्तर है और जो हम जैसे इस देहधारी संसार में फंसे हुए जीवन में, उनका जो सर जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन प्रोसेस यही है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप, श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन, भक्तों का संग, कथा श्रवण, यह हमें उस प्लेटफॉर्म पर ले आएगा जिसके लिए भगवान ने हम लोगों को ये संसार बना कर दिया है, है ना। निर्बंध कृष्ण संबंध है, जो भी कुछ हमारे पास है उसे भगवान की सेवा में लगाना, उसको स्पिरिचुअलाइज करना, उसको कृष्ण से जोड़ना। म्यूजिक सुनते हैं तो कृष्ण कॉन्शियस सॉन्ग सुने, हरे कृष्ण सुने, है ना। पढ़ने का बहुत शौक है तो फिलॉसफी पढ़े, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़े। डांस करने का शौक है, पब्स में जाने का शौक है, तो उसमें तो रात में जाना पड़ता है, हमारे यहां सुबह 4:30-4 बजे शुरू होता है, रात के 9 बजे तक डांस कर सकते हैं। वस्त्र आभूषण पहनने का, दुनिया में अलग दिखने का आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, इसलिए लोग बाल भी ऐसे खड़े कर लेते हैं जैसे घोड़े के पीछे होते ना, तो अलग अलग स्टाइल चल रहा है, जस्ट कि लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकूं। कपड़े भी इसलिए ऐसे पहनते, ब्रांडेड इसलिए पहनते, मैं इस ब्रांड का, मैं उस ब्रांड का, मेरा ये हेयर स्टाइल, तुम्हारा ये हेयर स्टाइल, को बिल्कुल बाल ही उड़ा देते हमारी तरह। और कई लोग शिखा भी रखते हैं, कई लोग दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, बस इसलिए कि मैं अलग कैसे दिखूं। लेकिन भक्त लोग तो सबसे ज्यादा अलग दिखते हैं, एक तिलक लगा लो तो सबके ब्रांड फीके पड़ जाते हैं, है कि नहीं। आप भीड़ में एक तिलक लगा के पहुंच जाओ, कोई ना पूछेगा कि कौन सी शर्ट पहनी, आनंद सोनी की, अब तो मैं ब्रांड के नाम ही नहीं मालूम, बट तो लोग कहेंगे बेकार है, उसको देखो यार तिलक लगाया उसने, क्या ब्रांड है, किसका ब्रांड है, ये कृष्णा ब्रांड है ना, विष्णु लोक से है। और शादी पार्टी में जाते हैं लोग, देखा आपने, भक्त लोग भी जाते हैं, भक्त लोग कहते हैं अच्छा हम भी जाएंगे, वो भी जाते हैं, उनको लगता है जो अलमारी भरी है पुराने कपड़ों की या नए कपड़ों की वो कभी यूज करेंगे, तो उनको लगता है शादी पार्टी में तो कम से कम पहन लें, तो शादी पार्टी में पीछे होकर जाते हैं लोग। हम कई बार गलती से किसी ऐसे फंक्शन में पहुंच जाते हैं, वैसे तो हम जाते नहीं बट फिर भी, तो उस फंक्शन में देखते हैं अरे प्रभु जी आप तो पहचाने नहीं जा रहे हैं, मंदिर में धोती कुर्ता में, तो यहां राजू तुम्हारे कपड़े तो बहुत चमक रहे हैं। तो भक्त भी शर्मिंदा में मुझे क्या करूंगा। और वहां पर तो सारी आपकी जैसे हैं, सारी कोट पेंट टाइम है, कंठ लंगोट बोलते हैं ना ऐसे टाइट करके जरा, तो सब उधर ही ऐसे हैं, सब महंगे महंगे कपड़े पहन कर आए हैं, सब बस ये दिखा रहे हैं कि मेरा ये ब्रांड है, मैंने यहां से लिया, ऐसा करा, और सब अलग दिखना चाह रहे हैं। लेकिन अगर कोई वहां पर बढ़िया सफेद धोती कुर्ता में तिलक के साथ हाथ में माला लिए पहुंच जाए, तो जैसे लगता है रैंप पे चल रहा हो, उसको कोई ब्रांड दिखाने के 500 रुपए में धोती कुर्ता मिलता है, कोई ब्रांड नहीं है, सब आके चलेंगे उसके साथ खड़े हो जाए, हम आपको जानते हैं। तो भक्तों को तो चाहिए कि वो ट्रेंड सेटर्स बने, है ना। प्रभुपाद जी कहते थे, हमारे प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स वो कहते थे दे आर डायरेक्टली फ्रॉम वैकुंठास, ये तो सीधा लगता है जैसे वैकुंठ से उतरे हुए। आप सोचो कौन सा हेयर स्टाइल बना के जाऊं शादी में, यार पिछली बार तो उधर वो बनाकर गया था, इस बार की इधर की मांग निकालूं, बीच की करूं, लाल कर लूं, पीले कर लूं, बाल कौन सा करूं, अरे उड़ा डालो ना। प्रभु जी इसकी बात कर रहे, ऐसा देखो ऐसे हेयर स्टाइल बनाओ प्रभु जी, रहना है ना, और क्या सुंदर लगेगा व्यक्ति, पूरा चमकता हुआ दमकता हुआ चेहरा उसका, बीच में तिलक, तीन लोगों को साथ मिलाया, यहां पर बैठे विष्णु, इधर बैठे ब्रह्मा जी, इधर बैठे शिव, तिलक लगा के पहुंचे, देखते ही कृष्ण का स्मरण होता है, वो तेल ही लगा रहते भाई, काले कर दे, सफेद कर दे, नीले कर दे भाई, दो दो घंटे दुकानों में बैठना, वो भी थप्पड़ मारता, घोसा भी मारता, ठाठा मारता, वो भी सारा बदला लेता है, और फिर हमें लगता हम सही लग रहे हैं। अरे माला करना शुरू करो, पार्लर बंद हो जाते हैं। भक्ति की जो चमक है उसकी चमक पूजी कहते कहां जाते हो, कहीं जाता नहीं, मैं माला करता हूं भाई, 4 नियम का पालन करिए, ऐसी शुद्धता आती है, इतना बढ़िया मतलब होता है कि आप ढूंढते रहे कि क्रीम ही नहीं मिलेगी मार्केट में। जिनका रंग साफ नहीं है वो लोग भी चमक रहे होते हैं भक्ति की शक्ति से। करैक्टर इतना अच्छा है, भक्त इतने अच्छे हैं, प्योरिटी इतनी है, सरलता इतनी है कि बाहरी लोग तो केवल बाहरी लोग आवरण से आकर्षित करते हैं, अच्छे कपड़ों से, अच्छे ब्रांडेड से, है ना। लेकिन भक्त लोगों को जरूरत नहीं पड़ती, वो कृष्ण को आकर्षित करने के चक्कर में है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, वो कृष्ण को तुष्ट करते हैं, जगत अपने आप पूरा संसार उनसे तुष्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। और आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं भक्त अपने सद्गुणों से। कई भक्तों के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज होती हैं क्योंकि वो हमेशा दया करना चाहते हैं, कृष्ण की क्वालिटीज उनके अंदर भी आती है, दया करना चाहते हैं हमेशा। तो उनके जो संबंध बनते हैं लोगों के साथ वो सही संबंध, अच्छे संबंध बनते हैं। बाहर वालों के साथ संबंध होंगे, और कहां चल रहा है, क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स की चर्चा थोड़ी, वो चर्चा, कपड़ों की चर्चा, खत्म। लेकिन भक्त लोग व्यक्ति को हमेशा के लिए प्रयास करते हैं, बचाएं उसको, तो इसलिए वो उनसे आकर्षित रहते हैं, उनका संग करते हैं। और इस प्रकार वो जो है कृष्ण के जैसे आकर्षित हो, आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। तो जिस तरह गजेंद्र हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं अपने जीवन से, उनको तो एक ग्रह ने पकड़ा, हमें काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, मद ने, मत्सर्य ने, शरीर के दर्दों ने, बिजनेस की प्रॉब्लम ने, दुश्मनों ने, कितनों लोगों ने घेर रखा है, रोज हमारे को धीरे धीरे चबा रहे हैं, लेकिन प्रार्थनाएं निकल रही हमसे, है ना। तो भगवान से आके इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए, उनके गुणों को याद करना चाहिए, इस प्रकार हम लोग भी उस चेतना में आ सकेंगे जैसे गजेंद्र। हरे कृष्ण। जिज्ञासा है, वैसे टाइम तो हो चुका है, घूम सकते हैं लेकिन। हाँ जी, बिल्कुल कई जगहों पे लिखा है कि जो भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करता है उसको वैकुंठ मिल जाता है, और इधर भक्ति करने वालों को भी मुश्किल से मिल रहे हैं कि नहीं। तो कई बार जो शास्त्रों में या पुराणों में इस तरह का वर्णन मिलता है कि सो गीता बांटो और वैकुंठ जाओ, है ना, या इतनी गाय के बराबर है, तो पूरा श्रद्धा अगर किसी की है तो वो बिल्कुल होगा उसके साथ। दूसरा, कई जगहों पर बोला है कि अगर कोई इतने गीता डिस्ट्रीब्यूट करता है वो इतने इतने समय तक, इतने कल्पों तक वैकुंठ में रहेगा, कई ऐसा भी बोला जाता है, या कुछ लोगों को प्राप्ति करेगा फिर वापस आ जाएगा। लेकिन भगवान हमसे ऐसा संबंध नहीं चाहते कि आप अमेरिका में जॉब कर रहे हो, दो महीने की छुट्टी में वापस आ जाओ फिर चले जाओ। वो क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे पास रहे, है ना। तो उस चीज के लिए भगवान चाहते हैं ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जब तक हम उस क्वालिफिकेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक भगवान हमारे लिए, हमारी मदद करते हैं उस पर्टिकुलर मार्क्स तक पहुंचने के लिए। तो क्या करते हैं कि मान लो अगर कोई 100 में से 90 लेकर आया एक जीवन में भक्ति करके, तो जो 10% ड्राइव ही गया उसका, तो जस्ट चेंज ऑफ यूनिफॉर्म, शरीर का बदलना है बस। भक्तों को उससे कोई टेंशन नहीं होती, ये दूसरे लोगों को टेंशन होती है बस। भक्त लोग तो हर सिचुएशन में खुश हैं, शरीर बदले चाहे ना बदले, स्वर्ग भेजो चाहे नर्क भेजो, लेकिन आपकी भक्ति मिलती रहे। तो उनको कुछ नहीं लेना देना, वो कहते हैं बस अब हम रोज भी तो कपड़े बदलते हैं ना, तो वो कोई हमारे लिए परेशानी थोड़ी है। उसी तरह जो ये वाला कपड़ा बदलते हैं शरीर, उससे भक्तों को भी परेशानी नहीं होती। भगवान तो उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जिससे कि वो बाकी बचा हुआ 10% पूरा करके आ जाए, ताकि एटर्नल मेरे साथ रहे। ठीक है। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की, श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रमाण।